नमस्कार, ब्रह्म कुमारीज के फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारी ये विशेष पेशकश है बी द चेंज सीरीज। पिछले लगभग 40 दिनों से हम आपके साथ लाइव कॉन्वर्जेशंस में जुड़ रहे हैं और आप सब लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यह आपकी ही छोटी सी पहल थी कि जहां पर आपने मदद के लिए हमें रीच आउट किया और कहा कि अगर हमें गाइडेंस की जरूरत है तो हम आपके पास आ सकते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर हम आपसे कम्युनिकेट कर सकें। और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसे यूज करते हुए हमने पिछले एक महीने से भी अधिक समय में आपके साथ बातचीत की है, जहां पर आपने अपने हालचाल को हमारे साथ शेयर किया है, अपनी दिल की बातें हमारे साथ बताई हैं और इन बातों में हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। जहां तक हम स्पिरिचुअल विजडम और गाइडेंस हमारे मास्टर्स ऑफ मेडिटेशन से आप तक ले आते हैं, वैसे ही आपके सवालों को सुनकर हमें भी ये एहसास हो रहा है कि हमें बहुत कुछ देने की जरूरत है और बहुत कुछ ऑफर करने की जरूरत है। इन्हीं कोशिशों को कामयाब करने की इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आज के बी द चेंज सीरीज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्रीनिधि और पिछले कई दिनों से बी द चेंज में मैं पॉजिटिव चेंज में अपने आप को एक चेंज मेकर बनाने के इस सफर में आपका हम सफर बन रहा हूं और हमारे साथ गाइडेंस के लिए हर दिन एक मास्टर ऑफ मेडिटेशन होते हैं। और आज एक ऐसी ही मास्टर ऑफ मेडिटेशन, एक ऐसी हस्ती हमारे साथ हैं, एक अकम्पलिश्ड योगी हैं जिन्होंने अनेकों दशकों तक लाखों लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की है। हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी दिव्य प्रभा दीदी जी हैं जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। दीदी जी ब्रह्मा कुमारी के नॉर्थ सब जोन के जो सेंटर्स हैं मुंबई में उनकी निदेशिका हैं। एक अकम्पलिश्ड योगी होने के साथ साथ एक लाइफ लॉन्ग राजयोगी रही हैं और उनके स्पिरिचुअल गाइडेंस को आज हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और आप सभी दोस्त उनसे बेझिझक सवाल पूछ सकते हैं। जो दोस्त इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी की तरफ से दिव्या दीदी आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में।
नमस्ते
दीदी। वक्त अचानक बदल गया, बहुत सारे लोग इस बदलाव को कोप अप नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है और कब तक होगा, तो ये सारे प्रश्न हमारे पास थे। आप मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। मुंबई को हम हमेशा ये समझते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी है, एक ऐसी सिटी है जो हमेशा फुल ऑफ लाइफ है। जब अचानक ये सारी चीजें एक स्टैंड स्टिल पे आ गई तो आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने इस बदलाव के वक्त को कैसे देखा? क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमारे इतिहास में ऐसा कोई मोमेंट आया होगा जहां पर मुंबई में लोकल ट्रेन रुक गई हो।
हाँ जी, ये फर्स्ट टाइम लाइफ में देखने को मिला है कि बॉम्बे में कितनी भी बारिश हो, कुछ भी हो, कितने भी तूफान हो, लेकिन कितने दंगे हो, लेकिन कभी भी यहाँ की ट्रेनें रुकती नहीं है। एक कोरोना की ये ताकत है कि जिसने सारी ट्रेन को बंद कर दिया है। और जब ये कोरोना की बात आई उसी पहले ही शिवरात्रि यहाँ चल रही थी और 500-600 लोग शिविर गार्डन में कर रहे थे और अचानक ये बात आई कि कोरोना के वजह से अभी लॉकडाउन करना पड़ेगा, सबको घर में रहना होगा, तो सबके लिए एक नई बात थी। लेकिन इसकी सीरियसनेस को समझते हुए तुरंत ही हम लोगों ने शिविर वालों को भी कह दिया और सेंटर के भाई बहनों को भी कहा कि आप अपने घरों में रह करके ही ज्ञान को सुने। और तुरंत ही हम लोगों ने ऑनलाइन मुरली सुनाना, जो ज्ञान सुनाना योग के और प्रोग्राम है वो ऑनलाइन शुरू किए। तो सभी के लिए एक अचानक की तो बात थी ही कि अचानक इस प्रकार का परिवर्तन, जो सडनली एकदम सारी दुकानें बंद और सारे ऑफिस बंद, सारा कारोबार अचानक बंद होने से सबके मन पर एक कई प्रश्न तो थे ही, लेकिन आध्यात्मिकता जहां है तो वहां पर होता है कि भाई जो कुछ परिस्थिति सामने आई है उसको हमें सहर्ष एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। जहां कुछ हमारा वो चल सके ऐसा है नहीं, एक्सेप्ट करके उस परिस्थिति के साथ हमें चलना है, वो सीखना होगा और आगे हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर और किस प्रकार से अपने, चाहे व्यवसाय की बात हो, स्टडी की बात हो, तो भी देखा जा रहा है कि अभी ऑनलाइन छोटे छोटे बच्चों की, कॉलेज की और कई ऑफिसों के कार्य हैं वो ऑनलाइन शुरू हो गए हैं। पहले भी ये साधन थे लेकिन इतना यूज नहीं करते थे क्योंकि फिजिकली जाते थे आते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण नहीं जा सकते हैं तो इन साधनों का यूज करना, और मैंने देखा कि कई लोग इस साधनों को यूज करना सीख भी गए हैं। पहले डिफिकल्ट लगता था लेकिन अभी छोटे छोटे स्थानों में और छोटी छोटी बहनें, घर वाले, चाहे मैंने देखा कि माताएं हैं वो भी अभी मोबाइल यूज करना सीख गई हैं, जानकारी लेना, उसका नॉलेज लेना शुरू कर दिया है और यूज करना शुरू कर दिया है। तो ये अचानक की बात थी इसीलिए सबके मन में एक चीज तो थी ही, लेकिन फिर भी अभी सबको एक्सेप्ट करके चलना है। और मैं समझती हूँ अभी 2-3 मास हुए तो थोड़ा सब हैबिचुअल भी हो गए उस बात से कि कैसे कोरोना के साथ हमें चलना है।
जी, ये बदलाव के साथ तो बहुत अच्छे से हम कोप अप कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। दोस्तों को हमारे मदद की जरूरत पड़ी, कुछ लोगों को थोड़ा सपोर्ट सिस्टम चाहिए था, कुछ दोस्तों को स्पिरिचुअल विजडम भी चाहिए था, कुछ लोगों को बहुत सारे प्रश्न थे। हम सब लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको नेविगेट करने की कोशिश की है और इसी सफर में हम चाहते हैं कि लोग हमारे नाव को सही दिशा दें। और इस बदलाव के समय में बहुत सारे लोगों के लिए आंधी तूफान जैसा वक्त नजर आता है, तो ऐसे समय पर भी उनको जो गाइडेंस चाहिए, एक प्रॉपर कोर्स चाहिए, एक दिशा निर्देश चाहिए, उसे देने के उद्देश्य से हमने प्रोग्राम शुरू किया। जो हमारे दोस्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, दीदी जी से कोई बात शेयर करना चाहते हैं, इफ यू जस्ट वॉन्ट टू गिव अस अ शाउट आउट, इफ यू जस्ट वॉन्ट टू से समथिंग, शेयर समथिंग, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, यहाँ पर कहीं पर भी जहां पर आप देख रहे हैं, यूट्यूब पर या फेसबुक पर, दोनों ही जगह आप कमेंट्स लिख सकते हैं। उन कमेंट्स में से सवालों को हम दीदी जी के साथ शेयर करेंगे और दीदी जी से हम गाइडेंस भी लेंगे। जो दोस्त ऐसा समझते हैं कि उनके सवाल कुछ प्राइवेट हैं, जहां पर वो अपना नाम नहीं बताना चाहते, तो वो दोस्त सवाल हमें लिखकर भेज सकते हैं socialmedia@brahmakumaris.com पर, और वहां पर से भी मैं सवाल लूंगा और आपके नाम को प्राइवेट रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा। कुछ सवाल कल आए थे दीदी, जिनके जवाब हम नहीं ले पाए थे, क्योंकि हर दिन होता है कि एक ही घंटे का टाइम होता है हमारे पास और बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनके सवाल हम नहीं ले सकते। तो कल का एक सवाल मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कल हमारे एक फ्रेंड ने ये प्रश्न पूछा था कि बच्चों को हम बहुत सारी पॉजिटिव चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं और बच्चे उन चीजों को सीखने भी लगते हैं, जैसे मेडिटेशन सीखने लग गए हैं बच्चे, बहुत सारे घरों में ये परिवर्तन आया है। जब वो देखते हैं कि एक पेरेंट, जैसे अगर मम्मी भी मेडिटेशन करते हैं तो फिर उनको ये बातें सीखने और समझने में आसानी लगती है, बट दूसरा पेरेंट है, समझो फादर है, या फिर फादर मेडिटेशन सीखते हैं और मदर नहीं सीखते हैं, तो उनके व्यवहार में जो परिवर्तन देखने को मिलता है कि भाई हम तो अच्छा कर रहे हैं बट पापा नहीं कर रहे हैं, पापा बहुत ही एंग्शियस रहते हैं, वो चिंतित रहते हैं, तो उनको लगता है कि भाई हम तो कर रहे हैं बट ये क्यों नहीं कर रहे हैं। जब बच्चे ये सवाल पूछते हैं तो ये जवाब देना मुश्किल पड़ जाता है कि भाई वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तो हमसे बड़े हैं, समझदार हैं, हम ही क्यों सुबह जल्दी उठ रहे हैं, हम ही क्यों फिटनेस कर रहे हैं, हम ही क्यों योगा कर रहे हैं, बड़े भी करने चाहिए, घर के दूसरे पेरेंट्स से भी वो एक्सपेक्ट करते हैं, उसके बारे में हमें क्या कहा जाए, बच्चों को क्या जवाब दिया जाए, ये सवाल पूछा गया था।
हाँ जी, इसमें ये है कि हर एक व्यक्ति की एक तो रुचि और इंटरेस्ट अपना अपना होता है, और जिसमें जिस चीज को इंटरेस्ट होता है तो उस हिसाब से उस चीज को वे एक्सेप्ट करते हैं और एडॉप्ट भी कर लेते हैं। अभी ये है कि इस समय पर मम्मी कर रही हैं और फादर नहीं कर रहे हैं, पॉसिबल है कि एक ही प्रकार की विचारधारा, एक प्रकार की रुचि उनके मन में न हो, लेकिन कोई एक व्यक्ति करे न करे, लेकिन हमें यह समझना है कि इनसे मुझे बेनिफिट हो रहे हैं, मुझे फायदा हो रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे करना है, क्योंकि जो चीज एक व्यक्ति करता है वो परिवार के सारे सदस्य करे ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो बच्चों को भी समझना है कि भाई मम्मी कर रही है और मुझे अच्छा लग रहा है, मम्मी करती है तो भी अच्छे एक वाइब्रेशन मिल रहे हैं, और मम्मी के जीवन में बदलाव आ रहा है और अच्छे फायदे हो रहे हैं, तो पापा ना करे तो कोई बात नहीं। और ये भी बच्चों को समझना है कि जब मम्मी करेगी, बच्चे करेंगे, तो धीरे धीरे वो घर के माहौल में वो चीज आएगी और बच्चों में भी परिवर्तन आएगा, तो फादर की भी इच्छा होगी कि देखो ये मम्मी को देख करके ये बच्चे कितना अच्छा मेडिटेशन में बैठते हैं, कितने अच्छे शांत हो गए, कितने मधुर भाषी हो गए हैं, कितनी उनके व्यवहार के अंदर कितनी मर्यादाएं और कितनी अच्छी रॉयल्टी आ गई है, कितने गंभीर बच्चे बन गए हैं। ये चेंज देख करके फादर को भी होगा। बच्चे कई बार बड़ों को सिखाने के लिए एक निमित्त बन जाते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आता है ट्रांसपोर्ट का, कि एक बड़ी इश्क के भाई थे और वो ड्राइविंग के लाइसेंस देने वाले खुद थे कंपनी में, और वो जब गाड़ी चलाने के लिए बैठते थे तो उनकी पोती उनको ये कहती थी कि दादा जब तक आप बेल्ट नहीं लगाएंगे ना, तब तक मैं गाड़ी के अंदर नहीं बैठूंगी। अर्थात छोटे बच्चे ये बड़ों को शिक्षा देने के लिए, बड़ों को समझ देने के लिए भी काबिल बन जाते हैं। तो हमें समझना है कि चलो हमारे द्वारा फादर को ये प्रेरणा मिले, ये सीख मिले, और हमको देख करके उनको करने की इच्छा हो, ऐसा पॉसिबल होता है।
ये आपने बहुत अच्छी बात कही दीदी। मेरे कुछ दोस्त ऑलरेडी ऑनलाइन हैं और वो सवाल पूछना चाहते हैं, उनके सवालों से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। पहला प्रश्न हमारे साथ है सुनंदा वर्मा जी का, और वो फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, और वो कहते हैं कि प्लीज मुझे ये समझाएं कि ये जो ऑनलाइन मेडिटेशन होता है इसको किस तरह से करना चाहिए, मतलब स्क्रीन को देखें या ध्यान लगाएं, पर ऐसे तो ध्यान लगता नहीं है, बार बार नजरें नीचे लाइक्स पर जाती हैं, तो ये यूट्यूब पर जो वीडियोस होते हैं मेडिटेशन के, वीडियोस देख के मेडिटेशन सीख रहे हैं, बट इनका ध्यान बढ़ता है जब ऐसा करते हैं, तो अब क्या करें, कैसे इसको सही तरीके से किया जाए, ये पूछते हैं।
सुनंदा बेन ने अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि मेडिटेशन अर्थात ही कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता हो, उनकी अच्छी बात है। और आजकल मेडिटेशन के अंदर कई प्रकार के वीडियो, कई प्रकार के सीन, सीनेरी, जो वर्ड्स होते हैं उससे अनुकूल वो सीन वहां पर दिखाए जाते हैं। तो एक प्रकार से ऐसे सहयोग मिल सकता है कि जो शब्द हम सुन रहे हैं ना, उनके साथ साथ वो चित्र भी हमारे सामने निर्माण होता है, तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा, कि जो शब्दों से सुन रहे हैं वह चित्र में देखते हैं तो क्लैरिटी भी हमें आती है। और तीसरी बात यह है कि शब्दों के साथ वो पिक्चर है तो हमारे मन में चित्र देख करके भी एक भाव उत्पन्न होते हैं। मेडिटेशन के शब्दों में भी परमात्मा के प्रति की एक प्यार की भावनाएं होती हैं। कई बार मेडिटेशन में हम गीत भी रखते हैं, म्यूजिक रखते हैं, क्योंकि परमात्मा के प्रति हमारे मन के अंदर उस भावों को उत्पन्न करने के लिए ये सहयोग देते हैं। दूसरा ये होता है कि जब मेडिटेशन कर रहे हैं तब हमारे सामने कुछ भी न हो तो न जाने वो शब्द हम सुन रहे होंगे, लेकिन हमारे मन में कुछ और सोच चलने की संभावना रहती है, लेकिन जो सुन रहे हैं वो ही दिखाई दे रहा है। तो हमारी नेत्र भी और हमारे कान दोनों ही एक जगह पर एकाग्र हो जाते हैं, तो मेडिटेशन करने में सुविधा रहती है और क्लैरिटी रहती है। इसीलिए जो चित्र है शब्दों के साथ साथ उनको भी देखे, और कई बार चित्र न भी हो लेकिन जो व्यक्ति बोल रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है, उनके चेहरे के जो भाव होते हैं, उनकी आंखों में जो प्योरिटी होती है, जो शांति की एक आभा होती है, तो उस वाइब्रेशन को भी वीडियो के माध्यम से हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। सिर्फ शब्द सुनाई देते हैं लेकिन सामने कोई व्यक्ति दिखाई देता है हमें, और उनके जो भाव हैं वो चेहरे पर भी आ रहे हैं। तो उसको अनुभव करना, समझना और एकाग्रता वो आसानी से हो सकती है। इसलिए जो व्यक्ति सुना रही हो तो उनके चेहरे के तरफ हमारा कॉन्सेंट्रेशन, शब्दों के साथ साथ वो वाइब्रेशन कैच करें, उन भावों को हम कैच करें, वरना फिर चित्र होते हैं उनको हम देखें तो मेडिटेशन आसान हो जाए।
बहुत ही अच्छी बात है दीदी, ये जो बात आप कह रहे हैं कि बहुत बार हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो इन चीजों को, बट उनमें पॉजिटिव चीज देखें, उनमें से जो चीज है हमें विजुलाइज करने में हेल्प करती है उसका मदद लें, और जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर जाते हैं तो फिर हमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आपने बहुत अच्छे से वैरायटी बताई कि मेडिटेशन में हम कभी म्यूजिक यूज करते हैं, कभी हम किसी व्यक्ति को सामने बैठा हुआ देखते हैं, कभी हम गाने सुनते हैं, तो ये सारी चीजें मेडिटेशन में जो वैरायटी है एक नवीनता ले आती हैं और इसे एक एंटरटेनिंग तरीके से सीखने के लिए हेल्प करती हैं, और एक बार जब आप इसे सीख लेते हैं तो फिर बहुत आसानी होती है। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला प्रश्न हमारे एक दोस्त पूछ रहे हैं, इनका नाम है श्रवणी दास गुप्ता। श्रवणी का प्रश्न है, वो कहते हैं कि दीदी जी मेरे पति का बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, मुझे तो ईश्वर पर विश्वास है और मैं अचल अडोल हूं, मुझे कोई इतना असर नहीं होता, मेरे पति सब जानते हुए भी हलचल में आ जाते हैं, कैसे इस इशू से उभर आए, अगर थोड़ा आप इस विषय में बताएं तो मदद होगी, ऐसा श्रवणी पूछते हैं।
बहन का बहुत अच्छा प्रश्न ये है, और ये चीजें स्वाभाविक भी है क्योंकि भाई है, उनकी परिवार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी उन पर है, और इसीलिए जब बिजनेस में लॉस होता है या इनकम नहीं होती है तो उनको भविष्य की चिंता होती है, किस प्रकार से बिजनेस में इनकम नहीं होगी तो मैं फैमिली को कैसे निभा सकूंगा, कैसे परिवार की मैं पालना कर सकूंगा। इसलिए ऐसे देखा जाए तो ये चीज स्वाभाविक है, लेकिन जो बात अभी सामने आई है तो बहुत अच्छी बात, इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से मैंने भी सीखी है, क्योंकि आध्यात्मिक पुरुषार्थ करें उनके बीच में भी कई चीजें आती हैं, और ग्रस्त संसार को संभाले उसमें भी कई बार ऊंचाई कई बार निचाई ये होता ही है, परिस्थिति आती है। अब जो प्रॉब्लम आया है हम उसका चिंतन न करें, उसी के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन ज्यादा कमजोर हो जाता है, मेंटली हम वीक होते हैं, और उस परिस्थिति की गहराई में जितना डेप्थ में सोते हैं उतना डर और भय मन के अंदर है ना होने लगता है। लेकिन जो बात अब जैसी है वो है, लेकिन उसके बजाय अभी मैं और क्या कर सकता हूँ इनकम के लिए। मैंने देखा कि बॉम्बे के एक भाई थे, लॉकडाउन के पहले ही उनका बिजनेस है ना बहुत ही डाउन, जैसे क्लोज जैसा ही हो गया था, और बहुत ही चिंतित थे, और उसी के बीच में एक कोरोना की बात आ गई, अभी उसके अंदर सैनिटाइज यूज करने की बात आई और उसका यूज बहुत लोगों को करना पड़ता है। अभी उनके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही अच्छा एक सुंदर स्टैंड बनाया है कि आपको इस बॉटल को टच न करना पड़े, पांव से आप प्रेस करो और वो बॉटल पर प्रेशर आएगा और सैनिटाइज जो लिक्विड है वो आपके हाथ में आ जाएगा, तो उसको टच करने की भी जरूरत नहीं। तो वो बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, तो आज बहुत ही अच्छा बिजनेस उनका, लॉकडाउन के अंदर भी बहुत अच्छी इनकम उनकी शुरू हो गई। कहने का भाव ये है कि जो कार्य था वो अभी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, उसका चिंतन न करते हुए अभी इस परिस्थिति में और क्या हम बिजनेस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में चिंतन करें तो मैंने देखा कि कोई न कोई मार्ग, कोई न कोई दिशा हमें अवश्य रूप से मिल जाएगी, और वो चिंता से हम मुक्त हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है।
जी दीदी, हमारे एक और दोस्त प्रश्न पूछते हैं, डुगू नाम है इनका और ये यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं। इनका प्रश्न ये है कि समटाइम्स वी वर्क वेरी हार्ड बट डोंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स एंड फील एग्जॉस्टेड एंड स्टॉप डूइंग वर्क, सो प्लीज गिव सॉल्यूशन। मैं समझता हूँ ये सिर्फ डुगू का प्रश्न नहीं है, बहुत सारे हमारे दोस्तों के साथ होता है कि हम किसी चीज पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और अभी तो ऐसा हो रहा है कि जब से लॉकडाउन वगैरह हुआ है, जब ये बदलाव का वक्त आया है, तो ऐसे समय पर हमने बहुत मेहनत की है, बट सिचुएशंस बाहर की आउटसाइड की ऐसी हैं कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, तो इसकी वजह से हम में से बहुत सारे लोग एग्जॉस्टेड फील करते हैं कि भाई हमारे अंदर कोई ताकत नहीं रहती, कि अब हम कुछ नहीं करने वाले, तो ऐसे हो जाता है, तो ऐसे में हम क्या करें, इसके बारे में सॉल्यूशन दे, ऐसा डुगू पूछते हैं।
हाँ जी, ये निश्चयली होता है कि जब बहुत मेहनत करें और रिजल्ट नहीं मिलती है तो निराशा आने की पूरी संभावना रहती है। हो सकता है कई बार किस चीजों की मेहनत करें और इमीडिएट उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा और लंबा समय जाने के बाद उसका रिजल्ट मिल सकता है। या तो हमने जो मेहनत की है उसमें कई चीजों का एक्सपीरियंस हमें मिल जाता है और कई प्रकार की हमें नॉलेज भी, मैंने देखा है कि हमारी नॉलेज की भी वृद्धि होती है और साथ साथ अनुभवी भी हम बनते जाते हैं उसी से। उस समय पर भले हमें रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जब दोबारा एक कार्य करना हो तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे मैं अभी का एग्जांपल दूं कि अभी ऑनलाइन हमने योगा मैराथन का प्रोग्राम रखा था, तो हमने पहले शूटिंग की लेकिन वॉइस अच्छा नहीं था। अभी उस समय पर जो हमने सीन क्रिएट किए थे तो हमको काफी घंटे लगे थे, काफी मेहनत करनी पड़ी थी उसमें, और उसके बाद भी फिर वॉइस ठीक नहीं था। सीन तो बहुत अच्छा था, अभी वॉइस नहीं था तो इमीडिएट हमको दोबारा उसका वीडियो शूटिंग करवाना पड़ा, वॉइस लेनी पड़ी। लेकिन उसमें ये फायदा हुआ कि जो कई दिन हमको लगे थे अभी हमारे पास वो एक्सपीरियंस था, तो कई घंटों के अंदर हमें जो बैकग्राउंड तैयार करना था वो कुछ घंटों में भी हमने कर लिया और बहुत ही अच्छा। और थोड़ा उसमें और जो चाहिए उस चीजों के अंदर एक्सपीरियंस से हमने इम्प्रूवमेंट भी किया। तो इसीलिए कोई भी जो मेहनत की उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है कि अभी मुझे सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन आगे चल करके उस मेहनत हमारी निष्फल नहीं जाने वाली है, उसका रिजल्ट हमें मिलता ही है। कई बार किसी चीज में एक बारी मेहनत करने से ही नहीं मिल जाता, लेकिन उसको बार बार हमें करना पड़ता है तब उसका रिजल्ट मिलता है, और उसमें हमें थकना नहीं चाहिए। जैसे एक बहुत अच्छा मिसाल मकड़ी का है कि वो कितनी बारी वो अपना जाला तैयार करने के लिए कितनी बारी मेहनत करती है, कितनी बारी टूटता है, लेकिन अथक होकर के निराशा के बजाय उमंग उत्साह से वो अपना प्रयत्न करती रहती है तो सफल होती है। ऐसे जीवन के अंदर दोस्तों को भी ये कहना है कि उसमें नर्वस न हो जाओ, लेकिन सो जो पॉजिटिव हमें क्या क्या उससे लाभ हुए और आगे के लिए वो कार्य करना हमारे लिए आसान होगा, और जहां हम अथक होकर के परिश्रम कोई करते हैं तो उसका कुछ न कुछ रिजल्ट हमें अवश्य मिलता ही है।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी, कि ये जो एग्जांपल आपने दिया, जब हम एक स्पाइडर को देखते हैं वो कितने बार गिरता है बट वो अपनी मेहनत नहीं छोड़ता, और हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर ये समझ है, तो इस चीज के हिसाब से हमें भी इस चीज को फॉलो करना चाहिए। जो हमारे दोस्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप कोई बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई भी बात हो सकती है, वो पॉजिटिव हो या आपके पास सवाल हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे, फेसबुक पर और YouTube पर जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। उनमें से कुछ कमेंट्स को आप स्क्रीन पे देख पाएंगे और जो आपके फीडबैक्स हैं, अगर आप कुछ ऐसी चीज जो इस प्रोग्राम से बेनिफिट ले रहे हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, अगर आपको कुछ गाइडेंस मिल रहा है, कुछ हेल्प मिल रहा है, तो आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आपके किसी रिश्तेदार या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी आवश्यकता इन पॉजिटिव आइडियाज की, इन पॉजिटिव थॉट्स की उनको जरूरत है, ऐसा महसूस होता है, तो उनको भी आप इन्वाइट कर सकते हैं कि वो ये वीडियोज वॉच करें और वो भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे कुछ दोस्त जो सवाल पूछना चाहते हैं वो अपने सवाल तो लिखकर भेज ही रहे हैं। मैं उनमें से दो तीन प्रश्नों को कभी कभार कोलेट कर लेता हूं क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न दीदी जी से पूछ सकूं और गाइडेंस ले सकूं। शौर्य हमारे साथ प्रश्न पूछ रहे हैं, फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। वो कहते हैं, अपना आध्यात्मिक विकास करें या अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करें, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत ही सीधा प्रश्न है और ये सीधे पूछते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक विकास के बारे में, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में व्यक्ति सोचने लगता है तो अक्सर लोगों को यही लगने लगता है कि भाई अब ये दुनिया छोड़ देगा, ये सन्यासी बन जाएगा, ऐसा सोचा जाता है। तो ये पूछते हैं कि क्या हम अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करें या आध्यात्मिक विकास करें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे दीदी?
उसके बारे में मेरा कहना ये है कि दोनों प्रकार का विकास जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आध्यात्मिक विकास करें और उस तरफ हम बेध्यान रहें या अटेंशन न दें तो भी नहीं चलेगा, और सिर्फ हम आर्थिक हमारा विकास करने में लगे रहते हैं तो आध्यात्मिक विकास न होने के कारण आर्थिक विकास होने के बाद भी फिर हमारा मन अशांत रहता है, समय प्रति समय हम दुख की फीलिंग में आते हैं, परेशान होते हैं, बिजनेस की कहीं टेंशन के कारण रात को सो नहीं पाते हैं। आर्थिक विकास हो रहा है ना, धन अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड ये सारी चीजें भी परेशान करती है, और उस समय पर होता है कि भी मैं इतना कमा रहा हूं लेकिन मेरे मन को तो शांति है नहीं, मेरे मन को चैन नहीं है, इतना कमा रहा हूं लेकिन मुझे चैन की नींद भी नहीं आती है। और इसीलिए हमें समांतर उसका बैलेंस रखना चाहिए, आर्थिक विकास भी करना है लेकिन आध्यात्मिकता को इंक्लूड करके यदि आर्थिक विकास करते हैं तो बहुत अच्छे से आर्थिक विकास भी अपना कर पाएंगे और साथ साथ धन का जो सुख है वो भी हम खुद अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि पूरी लाइफ पैसा कमाने में करोड़पति हो गए लेकिन मन की शांति नहीं है, और लास्ट में फिर ये सोचते हैं कि अब हम कुछ आध्यात्मिकता की ओर जाएं, लेकिन उस समय पर काफी लेट हो गया होता है ने? और फिर इतनी आध्यात्मिक बातों में इंटरेस्ट भी नहीं ले पाते हैं, जो मेडिटेशन की बात है उसमें मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, लेकिन साथ साथ हमने आर्थिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिकता को अपने जीवन के अंदर इंक्लूड कर दिया हो तो हम दोनों चीजों का आनंद और सुख अपने जीवन के अंदर ले पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि आध्यात्मिकता ये नहीं कहती कि आप सब कुछ छोड़ दें, बट एक बैलेंस के बारे में आपने कहा, ये दोनों चीजें आवश्यक हैं बट किसी चीज को इग्नोर नहीं करना है। और आपने कहा कि धन कमा रहे हैं तो उसी टाइम पर भी हमें मन की शांति के बारे में भी सोचना है, क्योंकि वो एक अभ्यास बना रहेगा तो आगे जाके जीवन में वो चीजें करने में आसानी होगी। क्योंकि अक्सर लोग रिटायर होते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रश्न ये आता है कि अब हम क्या करें, और इस प्रश्न को भी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि ये तैयारी करनी है कि हम हर चीज, पैसा कमाने का एक उद्देश्य है बट उसके पीछे मन की शांति के बारे में उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। अगला प्रश्न हमारे एक फ्रेंड है राखी, क्षमा करें उर्वशी राणा, ये प्रश्न पूछते हैं। उर्वशी फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। वो कहते हैं, आई एम अ वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट पर्सन बट सम पीपल अराउंड मी हु आर वेरी क्लोज टू मी लाइड टू मी चीटेड मी ब्रोक माई ट्रस्ट एंड ब्रोक माई हार्ट। हाउ शुड आई डील विद देम? इज देयर मेजरमेंट टू जज पीपल। उर्वशी का प्रश्न ये है कि वो एक ईमानदार और एक ट्रांसपेरेंट इंसान है, मगर उनके आसपास के कुछ लोग जो उनसे बहुत नजदीक हैं, उन्होंने उन्हें धोखा दिया, उनसे झूठ बोला, जिसकी वजह से उनका विश्वास टूट गया है और उनका दिल टूटा है, ऐसा वो कहते हैं। मैं इस चीज को कैसे डील करूं, वो पूछते हैं। क्या कोई मेजरमेंट है जिससे हम लोगों को जज कर सकते हैं, ये पूछते हैं।
अच्छा, हाँ, उर्वशी बहन ने जो कहा है, आज की दुनिया में बहुत सारे किस्से ऐसे होते हैं कि हम सच्चाई से ट्रांसपेरेंट रह करके लोगों के साथ अपने व्यवहार, अपनी मन की, दिल की बातें करते हैं, तो कई बार कोई ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैं कि जो हमें उसमें हेल्पफुल होते हैं, सहयोग देने वाले, मदद देने वाले। और कई बार ऐसे व्यक्ति भी संसार के अंदर होते हैं कि उसका बेनिफिट लेते हैं, कि हमारी वीक पॉइंट को वो पकड़ लेते हैं, हमारी कमजोरी को पकड़ करके वो हमें और भी तकलीफ भी दे सकते हैं। दोनों साइड इसमें है। अभी सामने वाले व्यक्ति की भावना हमारे प्रति क्या है, हम ट्रांसपेरेंट है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति, उसको भी परखना जरूरी है। हमारी मन की बात सच्चाई से रखें, कहां रखें, किसके पास रखनी चाहिए, जहां वो हमारी मन की बात को योग्य समझ सकें और वो हमें हेल्प कर सकें। जब उनके अंदर वो सच्चाई की बात है नहीं, और इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी मन की बात कहीं करें, बिजनेस करें, फ्रेंड्स भी अपना बनाए किसी को, जीवन साथी भी हो, तो परखने की बहुत जरूरत है। बिना परख के जहां आया वहां हम अपनी मन की सच्ची बातें सभी के आगे रख दें, तो उससे बेनिफिट नहीं होता है, उससे कई बार नुकसान होता है। और इसीलिए जिनके साथ हम शेयर करना चाहते हैं, उनको समझना, उनको परखना जरूरी है कि कहां हम अपनी बातें कहें, क्योंकि आजकल के समय में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं कि हम अपनी दिल की बात कहें और हमें मदद करें। इसीलिए हमें सोच समझ करके ये बातें एक तो करनी चाहिए, जिससे सावधानी रखना जरूरी है, और हमें देखना चाहिए कि हमारी विचारधाराएं, जिनको बात करते हैं उनकी विचारधाराएं कैसी हैं, और कितनी हमें हेल्प करने की भावना रियलिटी में उनके अंदर है, वो समझ करके हम उनके साथ डील करें। कई बार होता है ना, किसी व्यक्ति को जो भी मन की बातें हैं, जो आया उसको सुनाते हैं, जो आया उसको सुना देते हैं, ऐसे नहीं, लेकिन योग्य स्थान पर और योग्य व्यक्ति को हम कहें, तो फिर धोखा नहीं खाएंगे। और बाकी ये समझ कर भी चलना है कि ये दुनिया है, और अभी कलयुगी दुनिया कहते हैं, जहां धोखे की दुनिया कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तो होंगे ही, लेकिन हमें समझ करके चलना है, ऐसा मैं समझती हूँ।
बहुत ही अच्छा जवाब था दीदी ये, कि हमें अपने परख शक्ति का विकास करना है, सोचना है कि क्या सही क्या गलत है, और समय ऐसा है तो इस समय के हिसाब से अपने आप को समझाना, अपने आप के साथ बातचीत करके सही चीजों को सही तरीके से अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता आपने कही। ऐसे जैसे आपने मन के बारे में ये बात कही, ऐसे ही मिलता जुलता एक प्रश्न है जो हमारे दोस्त YouTube से कपिल जुड़े हैं, और वो पूछते हैं, कपिल मेहता नाम है इनका। कपिल पूछते हैं, थैंक यू श्रीनिधि एंड दीदी जी, ओम शांति। इन डेली प्रेजेंट लाइफ वी कम अक्रॉस सिचुएशंस, गुड और बैड, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट द बैड थिंग्स ऑफ पास्ट, हाउ टू अवॉइड सच थॉट्स ऑफ द माइंड। कपिल का प्रश्न है, वो कहते हैं कि लाइफ में अच्छे और बुरे सिचुएशंस दोनों आते हैं, मगर जो बुरी चीजें हो गई हैं अतीत में, वो चीजें भूलना बहुत मुश्किल होता है, और यही ख्याल जब बार बार आते हैं, यही विचार मन में आते हैं, तो इन विचारों को हम कैसे अवॉइड करें, ये प्रश्न पूछते हैं। कपिल का प्रश्न है ये।
कपिल भाई, आपने जो कहा है कि पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं या कोई भी हमारे से रॉन्ग कार्य हो गए हैं, तो इस विद्यालय में बहुत अच्छी बात कही जाती है कि जो पास्ट हो गया है और हम समझते हैं कि वो गलत था, ये रियलाइज भी हम कर रहे हैं कि पहले पास्ट में जो भी हुआ है कर्म, ये गलत हुआ है। अब गलत चीज को बार बार हम के हमारे मन में वो दोहराएंगे और उस विचारों को दोहराते रहेंगे तो वो हैबिट हमें परेशान भी करती रहेगी और वो हैबिट हमारी बनी हुई रहेगी। अभी हमें उनसे मुक्त होना है। जैसे एक लाइन हमने खींची पेन से, अब बार बार उस पर बार बार पेन से लाइन हम ड्रॉ करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो वो बड़ी हो जाएगी और उसके निशान भी फिर मिटाने के बाद वो निशान उसके रह जाते हैं। लेकिन एक ही बार आपने लाइन खींची है और फिर उसको मिटा दी तो बहुत आसानी से वो मिट जाती है, उसके कोई फिर पास्ट की निशानी भी वो रहती नहीं है। इसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी जो भी गलत कार्य हमारे से हो गया या मुझे ठीक नहीं लगता है कि मैंने ये किया, उसका पश्चाताप में ही जीवन जीना ये ठीक नहीं है। लेकिन अब दोबारा वो गलती मेरे से ना हो, दोबारा वो रॉन्ग कर्म मैं ना करूं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जो हो गया है, जो मेरे हाथ से वो तो छूट गया है, अभी उसमें कुछ भी नहीं कर सकते था, आगे मैं कर क्या सकती हूँ? उस गलत कर्मों का सुधार करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या अच्छी कोई बुक पढ़ूं, अच्छे विचारों को मैं सुनूं, अच्छी संगत मैं रखूं? क्यों हुए थे ये गलत कर्म? उसका भी कोई ना कोई रीजन तो होता है ना, चाहे तो संघ के कारण हुआ है, खुद के वो संस्कार हैं जिसके कारण हुआ है, कोई परिस्थिति के वश हो गए हैं, कोई सिचुएशन के प्रेशर में आ गए और किया है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उनके। लेकिन जो हो गया है उसको छोड़ करके अभी उस कर्म को ठीक करने के लिए क्या इलाज है? जैसे शरीर में कोई बीमारी होती है, अभी हुई है ना, पास्ट में मेरे खाने में मैंने बैलेंस नहीं रखा, ध्यान नहीं दिया, उसी के कारण हो गई है। अभी पास्ट में मैंने ठंडा बहुत खा लिया इसलिए जुखाम हो गया, मैंने बहुत ही मीठा खाया तो मेरे को शुगर हो गई। अब वही दोहराते रहने से, सोचते रहने से, चिंता करने से क्या होगा? और ये शुगर बढ़ेगी। लेकिन उसके बजाय अब मैं कंट्रोल करूं ना, और उसको मैंने समझा कि इन चीज से नुकसान होता है, पहले मुझे नहीं पता था, अब पता चला तो उसका कंट्रोल मुझे करना है। ये इलाज करेंगे तो पास्ट की बातों को भूलेंगे और जो प्रेजेंट समय पर एक अच्छा कार्य करेंगे उसकी खुशी, उमंग, जो उत्साह हमें मिलेगा और उसका जो आनंद जीवन में मिलेगा, तो वो पास्ट का हमें और ही नफरत हो जाएगी उन कर्मों से कि अरे इतना श्रेष्ठ अच्छे कार्य करने से तो देखो कितनी मन की स्थिति हमारी अच्छी बनती है, कितना मन को अच्छा लगता है, लोग प्रिय हम बन जाते हैं, परिवार के सदस्यों की भी मुझे स्नेह और सहयोग मुझे मिलने लगता है, तो क्यों मैं ऐसे गलत कर्म करूं? उसके बेनिफिट मुझे मिल रहे हैं। वो महसूस करने से पास्ट की बातें भूलने की तो क्या, लेकिन उससे नफरत आने लगती है। और इस विद्यालय में बहुत अच्छा कहा जाता है कि ऐसा चेंज अपने आप को हम करें, हमें यहाँ अच्छा सिखाया गया है कि पास्ट में मेरे अंदर ये चीज थी, आज उसकी परछाई भी मेरी पर्सनालिटी के अंदर न हो, इतना परिवर्तन मुझे अपने आप में करना है।
बहुत ही अच्छी बात कही दीदी आपने, ये जो हम बी द चेंज कहते हैं, बदलाव आपको खुद बनना है। अगर आप खुद वो बदलाव अपने अंदर ला सकते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। और आपने कहा कि पास्ट की जो चीज है वो वापस हमारे अंदर थोड़ा भी अंश मात्र भी न रहे, ऐसा हम अपने आप को बदल सकते हैं और ये काबिलियत हमारे अंदर है। अब हमारे साथ जो सवाल है, शिवम जायसवाल पूछते हैं और शिवम हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं और मैं समझता हूँ ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे हमारे यंग दोस्त जो हैं उन लोगों के लिए है। शिवम कहते हैं, हे आई एम अ स्टूडेंट एंड आई वॉन्टेड टू आस्क दिस। वी आर एट होम फ्रॉम लास्ट 3 months ड्यू टू लॉकडाउन एंड वी यूज सेल फोन ऑल द टाइम। और ऐसे में उनकी माँ उनको डांटती भी है, तो शिवम कहते हैं, माय मॉम कीप्स ऑन शाउटिंग सो व्हाट शुड आई डू। शिवम एक स्टूडेंट है, मैं समझता हूँ स्कूल जाते होंगे या ज्यादा से ज्यादा कॉलेज जा रहे होंगे, और वो 3 महीने से लॉकडाउन में घर पे ही हैं, तो स्कूल या कॉलेज जहां पर भी हैं वो नहीं जा पा रहे हैं और ज्यादातर टाइम वो सेल फोन यूज करते रहते हैं ऑल द टाइम। और उनके मम्मी उन पर चिल्लाती हैं कि भाई बच्चे, बहुत सारे घरों में ये हो रहा है दीदी जहां पर बच्चे यूज करते हैं सेल फोन ज्यादा, तो वहां पर पेरेंट्स बच्चों पे चिल्लाते हैं कि दिन भर फोन पे लगे रहते हो। तो ये स्टूडेंट होके पूछते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट शुड आई डू, वो पूछते हैं।
श्री निधि भाई, समय देखो कैसा बदलता है। शिवम को भी कहे समय कैसा चेंज। एक बारी हम भी यहाँ पर यंग लोगों के लिए लेक्चर्स लेते थे कि मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसका बहुत यूज नहीं करो, बहुत लिमिटेड यूज करो ना। जबकि कॉलेज में जाके पढ़ाई होती थी, स्कूलों में जाके पढ़ाई होती थी, टीवी भी है घर में, वहां देखो भाई इसको नहीं। लेकिन अब समय में बदलाव आया है, क्योंकि अभी पढ़ाई ही उनको मोबाइल से करनी है। कितने छोटे छोटे बच्चों को आज लैपटॉप नहीं जानते हो तो उनके मदर फादर को उनके साथ बैठना पड़ता है जी। वहां से टीचर पढ़ाती है, यहाँ मम्मी पापा साथ में बैठ करके लैपटॉप पर उनको पढ़ाते हैं। तो अभी अधिक यूज उसका करना पड़ ही रहा है, लेकिन कई बार क्या परिवार के सदस्यों को ये आइडिया नहीं आता है, तो हमें उनको बताना पड़े कि मम्मी ये जो पढ़ाई है अभी मेरी मोबाइल के थ्रू ही हो रही है और इसीलिए मुझे अधिक समय इसको यूज करना पड़ेगा। और इसमें हम वफादार भी रहे कि हमारी पढ़ाई के लिए हम यूज करें। कई बार पढ़ाई के नाम पर कोई और चीजों के प्रति हम उस मोबाइल का यूज करते हैं और वो मम्मी पापा ने देख लिया, कहेंगे कि ये तो पढ़ाई के नाम पर कुछ और ही मोबाइल के अंदर सुन रहा है, और ही चीजें कर रहा है, तो फिर उनको डाउट क्रिएट होता है और फिर वो कहेंगे कि भाई इतने घंटे तुम्हारी पढ़ाई, और मम्मी पापा को बता दो कि मेरी पढ़ाई इतने बजे से इतने बजे तक ये मोबाइल के थ्रू ही होने वाली है, तो इतना घंटा मुझे यूज करना है और उसके बाद नहीं करो, तो उनको हमारे पर फेथ भी होगा, उनको हमारे पर विश्वास आएगा कि ये पढ़ाई के लिए ही यूज करते हैं, पढ़ाई के अलावा भी बाकी सारा समय हम उसमें, क्योंकि पढ़ाई तो कुछ घंटे होगी ना, रात को तो नहीं होगी, अर्ली मॉर्निंग नहीं होती है ना, उसके कुछ घंटे होते हैं, वो उनको इन्फॉर्म करें तो उनको भी रहेगा कि हाँ इसी समय पर उनसे पढ़ाई हो रही, तो नेचुरल बच्चे। लेकिन उसके बाद भी सारा समय हम लगे रहेंगे, छोड़े ही नहीं, तो नेचुरली उनको डाउट आएगा। तो उनको हमें फेथ क्रिएट करना है, सच्चाई हमारी समझानी भी है और करके सच्चाई दिखानी भी है, तो फिर मैं समझती हूँ कि वो नहीं बोलेंगे कि क्यों मोबाइल यूज करते हो।
मैं समझता हूँ शिवम दीदी ने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है। हम बहुत बार कम्युनिकेट नहीं करते हैं, हम बताते नहीं हैं, हमें लगता है कि इनको ये बात समझ में नहीं आती, बट अक्सर जब समझ में नहीं आती है चीजें तब समझाने की जरूरत होती है। और आप छोटे हैं इसके लिए आप ये नहीं समझे कि आप नहीं समझा सकते, आप खुल के अपने मदर को ये चीज बताएं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। और दीदी ने जो ईमानदारी की बात कही, वफादारी की बात कही कि आप पढ़ाई के लिए ही चीजों का इस्तेमाल करें, अगर उसके बाद आपको एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज देखनी भी है तो भी आप अपने पेरेंट्स को बता दें कि हाँ मैं थोड़ी देर के लिए अब ये गाना सुनना चाहता हूँ या कोई गेम खेलना चाहता हूँ, बताएं। बताने से चीजें आसान होती हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होता है और आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहें कि आप पढ़ाई करके टाइम पे पढ़ाई करें और हर चीज को बता के करें, तो पेरेंट्स भी आप पर बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दीदी। कपिल जी भी थैंक यू कहते हैं, आपने उनके प्रश्न का जवाब दिया और सॉल्यूशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कपिल। थैंक यू सो मच कपिल। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ऑलमोस्ट हम 45 मिनट्स पे आए हैं और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के प्रश्न को यहाँ पर लेना चाहता हूँ। एक और प्रश्न है जो प्रांशु अग्रवाल पूछते हैं। प्रांशु हमारे साथ YouTube पे जुड़े हैं, वो पूछते हैं, दीदी जी कैन यू प्लीज लेट अस नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। इससे पहले कि दीदी प्रांशु के उत्तर का जवाब दें, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमें मेडिटेशन के लिए कहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम मेडिटेशन कर सकें। आप सभी दोस्तों के लिए मैं बता दूं कि हर दिन इस एपिसोड में हम लास्ट के 5 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं। हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन हमारे साथ होते हैं तो वो हमें मेडिटेशन कराते हैं। बट अगर आप ज्यादा टाइम मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो हर दिन शाम को 5:30 बजे ब्रह्मा कुमारीज के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर यानी facebook.com/ब्रह्मा कुमारीज और ब्रह्मा कुमारीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यानी youtube.com/ब्रह्मा कुमारीज पर आप 15 मिनट हर दिन भारत के समय अनुसार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5:30 PM को 15 मिनट के लिए गाइडेड मेडिटेशन इंग्लिश में कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन के लिए नए हैं तो आप इस मेडिटेशन को सीख सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन ऑलरेडी जानते हैं, पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, तो हम सभी मिलकर जब कलेक्टिवली मेडिटेशन करते हैं तो एक दूसरे को मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो आप ये मेडिटेशन के वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं और हर दिन शाम को 5:30 बजे कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। शिवम जी थैंक यू कहते हैं, थैंक यू दीदी जी फॉर द सोल्यूशन कहते हैं। दीदी मैं अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ता हूँ।
हाँ जी।
अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो प्रश्न यही है कि बहुत सारे लोग हाल ही के दिनों में, प्रांशु अग्रवाल का ये प्रश्न था, आजकल बहुत सारे लोग लॉकडाउन के इस फेज में बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर करने लग गए हैं, बहुत सारे लोग योगा इत्यादि करने लगे हैं, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेने लगे हैं स्पिरिचुअलिटी में। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि धर्म और स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में कुछ डिफरेंस है क्या, उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं।
वो तो देखा गया है, राइट बात है उनकी, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम सामने आता है, कोई समस्या जब आती है सामने, ऐसे भी कहते हैं कि दुख में ही भगवान की याद आती है, सुख में तो भूल जाते हैं। तब ये कोरोना की परिस्थिति में जब दुख की फीलिंग है, समस्या है, टेंशन है, तो उसी वक्त पर सबको और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। कई बार कई बातें मेडिटेशन की आदि उन्होंने सुनी हुई थी, लेकिन फिर भी अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपनी स्टडी में ही काफी वक्त तो उनका चला जाता था और न मेडिटेशन वो कर पाते थे। लेकिन अब फ्री भी हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन में सब घर में ही है और घर में अभी समय भी उनको मिल रहा है, और इस समय पर कहा कि भगवान की याद भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में समर्थते हैं कि ईश्वर के सिवाय और तो भी कौन करेगा, क्योंकि सारा विश्व घेरा हुआ है इस बीमारी से। इतने बड़े साइंटिस्ट कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिटिशियन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब कहाँ कोई इलाज है। तो एक ही मार्ग उनको दिखाई पड़ता है, मेडिटेशन का, स्पिरिचुअलिटी का। अभी धर्म और स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस तो है ही। धर्म के अंदर धार्मिक क्रियाएं करते हैं, फिजिकली क्रियाएं करते हैं, और प्रयत्न रहता है कि हमारे मन को हम एक ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़े। लेकिन वो स्थूल साधन तो क्रियाएं हैं, वो तो फिजिकली कर रहे हैं, लेकिन मन अपनी डिफरेंट क्रिया कर रहा होता है, और इसीलिए उसमें जो एक प्राप्ति होनी चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मैंने देखा है कि कई लोग कई सालों से पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन ऊपरी सेटिस्फेक्शन है उनको कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, लेकिन उनसे मिला क्या। जब वो अपने आप से पूछते हैं ना, तब रियलिटी उनको समझ में आती है कि इतने समय से भजन कीर्तन पूजा करने के बाद भी अभी भी मन चंचल है, मन मेरा ईश्वर में नहीं लगता है, ये प्रश्न तो उनके आगे खड़ा ही खड़ा है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिला है। और अभी प्रेजेंट समय यंग लोगों को तो ये बातें समझ में भी नहीं आती है कि ये सब क्यों करना चाहिए और ये करने से क्या फायदा होगा। आजकल हर कोई व्यक्ति कुछ भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहे तो भी समझता है कोई बेनिफिट है तो मैं एक अपना कदम आगे बढ़ाऊं। स्पिरिचुअलिटी वो चीज है कि जो हम आत्माएं हैं, मनुष्य जो हमारा जीवन है, इस शरीर में एक चेतना है, उनकी उन्नति, उनकी प्रगति, अर्थात ये कहें कि हमारे जीवन में जो भी सुख और खुशी का अनुभव कराने वाली, शांति देने वाले, ये हमारा नेचर है, हमारे संस्कार हैं। और हम आध्यात्मिक धर्म में कुछ भी करें और उसमें चेंज न आए तो फिर तो सुख की और शांति की अनुभूति तो नहीं होगी ना। आध्यात्मिकता ये है कि शरीर के अंदर रखी हुई चेतन एक आत्मा है जो मन बुद्धि संस्कार सहित है, उसको जानना पहचानना। आज तक कभी भी हमने अपने आप को पहचानने और जानने में वक्त दिया ही नहीं हो, हम खुद अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को भी सही ढंग से नहीं समझ पाए हैं कि मैं कौन क्या हूँ। हाँ, किसी ने कह दिया पैसे हो, किसने कहा पैसे हो, तो वो मान करके चल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में मैं क्या हूँ? कोई मेरी प्रशंसा कर दे, मुझे खुश कर दे, लेकिन मुझे ये देखना है ना कि उन्होंने तो कहा, रियलिटी में वो चीज मेरे में है, उन्होंने तो खुश करने के लिए मुझे कह दिया। तो मुझे सही ढंग से अपने आप को पहचानना ये स्पिरिचुअलिटी है कि मेरे संस्कार क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरे जीवन में वैल्यू कहाँ तक है, मेरे पास शक्ति कहाँ तक है, मेरे पास समझ कहाँ तक है, मेरे कर्मों में, मैनर्स में कहाँ तक रॉयल्टी है। ये चीजें जीवन में लाना जरूरी है। कई बार हम बहुत ही अच्छे लेक्चर्स कर लें या कहीं धर्म के अंदर बहुत अच्छा उपदेश दे दे तो वो सुन तो लेते हैं, लेकिन जब करीब आते हैं और वो चीज हमारी लाइफ में नहीं देखते हैं तो उनका फेथ उठ जाता है। तो धर्म कहें, स्पिरिचुअलिटी वो चीज है कि धर्म में धारणा जीवन में लाने की बात है, सिर्फ पूजा करने की बात नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों में उन चीजों को ले आने की आवश्यकता है। और स्पिरिचुअलिटी वो चीज है कि हमारे जीवन में परिवर्तन, हमारे कर्मों में, हमारे सोच में, हमारे बोलने के तरीके में बहुत ही चेंज ले आता है। तो ये है रियली आध्यात्मिकता, और उसी के लिए मेडिटेशन की जरूरत है कि जिससे हमारे में उन चीजों का परिवर्तन आए।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी, धर्म और आध्यात्म के बारे में अंतर भी समझाया, बट आपने धर्म के सही अर्थ को भी समझाया कि धर्म का मतलब होता है धारणा। और सिर्फ बहुत बार हम सरफेस लेवल पे पूजा पाठ इत्यादि करते हैं मगर उसकी गहराई को नहीं समझते हैं, उसके वास्तविक मर्म को नहीं समझते, हम क्यों कर रहे हैं और इसका वास्तविक अर्थ क्या है, जब तक नहीं समझते हैं तो तब तक वो चीजों का असर हमारे ऊपर नहीं होता। और स्पिरिचुअलिटी सीधे उस चीज की तरफ आपको आकर्षित करती है कि आपका पर्पस क्या है, रियल चीज क्या है, उसकी तरफ वो ले जाते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त फीडबैक देते हैं, और श्रुति जी कहते हैं दीदी गॉड ब्लेस यू फॉर कंडक्टिंग सच प्रोग्राम्स, कहते हैं आपके सभी के फीडबैक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रुति जी एक और चीज कहते हैं, वो कहते हैं आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग दीदी, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन डेली माय रिलेशनशिप्स हैव बिकम सो स्वीट एंड प्योर, आई ऑलवेज कीप गुड विशेस फॉर पीपल अराउंड एंड आई रिसीव द सेम फ्रॉम देम। बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति जी आपके फीडबैक के लिए। मैं सोचता हूँ बहुत सारे हमारे दोस्तों के फीडबैक्स होते हैं, थैंक यू के मैसेजेस होते हैं, मैं वो सारे मैसेजेस नहीं ले पाता, स्क्रीन पर हम इसे शेयर जरूर करते हैं, अगर मैं सारे मैसेजेस पढ़ूं तो शायद इसके लिए काफी लंबा टाइम लग जाता है, बट कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो प्रश्न है, जो वो गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो बेनिफिट्स हमसे ले सके। दीदी मैं हमारे सभी दोस्तों की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, हम ऑलमोस्ट 55 मिनट्स पे हैं, आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए, इतने सारे दोस्तों के दिल के जो भी भावनाएं थी उसके लिए आपने रिस्पॉन्ड किया, तो हमारे सभी दोस्तों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बॉम्बे से हमारे साथ सीधे लाइव इस प्रोग्राम में जुड़े, थैंक यू सो मच।
आपको भी थैंक्स आपके ये रोजाना जो फ्रेंड्स हैं, जो मधुबन रेडियो से जुड़े हुए हैं, उनसे इनडायरेक्ट बातचीत करने का और उनकी मन की बातों को सुनने का, समझने का भी एक अच्छा चांस है, वो आपने दिया है।
जी, थैंक यू सो मच। मैं आप सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज सवाल पूछे, कमेंट्स लिखे, फीडबैक्स लिखे, आपने अपनी बातें शेयर की, बेझिझक हमारे सामने दिल की बातें खोल के रखी। ये नहीं सोचा कि ये कैसे लिया जाएगा, बट आप हमें अपना मानकर जो सवाल पूछते हैं उससे हमें भी बेहद खुशी होती है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं दिव्या दीदी जी को कि आप मेडिटेशन कराएं। उससे पहले पहले मेडिटेशन से मिलता जुलता एक प्रश्न है इस सवाल के साथ, दीदी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके बारे में कुछ बोलें और फिर मेडिटेशन कराएं। राकेश हमारे साथ जुड़े हैं और यूट्यूब से वो हमारे साथ हैं। वो कहते हैं, ओम शांति बहन जी, मेडिटेशन में बोलते हैं कि आंखें खुली रखनी है, पर जब मैं आंखें बंद करूं तो ध्यान नहीं लगता है, तो कैसे करें? ओम शांति। ये मेडिटेशन से रिलेटेड प्रश्न है दीदी, इसके विषय में आप कुछ बताएं और फिर आप हम सबको मेडिटेशन के लिए ले चलें।
राकेश भाई, ये आपका ही नहीं लेकिन बहुत लोगों का ये प्रश्न है, क्योंकि शुरू से हम ये सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि आंखें बंद करके हम ध्यान करें, पूजा करें, मेडिटेशन करें। और आपका प्रश्न भी सही है कि जब आंख बंद करते हैं तो बहुत सारे सीन, दिन भर में गुजरे हुए, पास्ट में जो हुए हैं, वो सारे सीन सामने आते हैं और एकाग्रता है नहीं बनती है। और इसलिए इस विद्यालय के अंदर ये मेडिटेशन में सिखाया जाता है कि आंखों को खुली रख करके मेडिटेशन करो। आंखें खुली हो और उस समय पर इस विद्यालय में बहुत ही एक अच्छा सिंबल है परमात्मा का, कि परमात्मा एक प्रकाश है, एक लाइट है, एक ज्योति है। उस ज्योति के चित्र को सामने रखिए, या तो चित्र सामने हो या तो अपनी बुद्धि भी एक चित्र को निर्माण करती है, तो अपनी बुद्धि में उस चित्र को ले आओ। जीवन में देखते हैं कि कई सीन हमने नहीं देखे होते हैं, लेकिन कोई शब्दों से वर्णन करें तो पिक्चर हम खुद ही बना लेते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा एक प्रकाश है, एक ज्योति है, लाइट है, तो उनको अपनी दृष्टि के सामने बुद्धि में ले आओ। एक तो ये बात है, दूसरा है कि जब एक ही चीज हम जो देखते हैं ना उन पर सोचते हैं, लेकिन आंखें बंद होती है तब तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है, जबकि हमारे सामने कोई एक चित्र है तो उसी को देखेंगे, उसी के बारे में सोचेंगे। इसलिए आंखें खुली रख करके मेडिटेशन है वो हम करें। दूसरी बात ये भी है कि आंखें खुली रख करके मेडिटेशन इसलिए भी करना है कि जब मेडिटेशन करते हैं तब हमारे मन में सकारात्मक विचार होते हैं, बहुत अच्छे, शुभ और सभी के भलाई के, कल्याण के, और एक प्रभु चिंतन होता है, एक शुद्ध विचार मन के अंदर होते हैं, तो हमारी आंखों के द्वारा वो वाइब्रेशन चारों ओर वो फैलते हैं, तो हम जो सोच रहे हैं उनका प्रभाव एटमोस्फियर में, जिस स्थान पर हम बैठे हैं वहां पर भी होता है। इस विद्यालय में आकर के बहुत ही अच्छी बात ये सीखी है कि दृष्टि के द्वारा, हाथ द्वारा, पैर द्वारा हमारे विचारों के प्रकंपन वो चारों ओर फैलते हैं। और इसीलिए दुनिया में भी एक सिस्टम है कि कोई वडील होते हैं, कोई गुरु होते हैं, तो उनके पैर छूते हैं, वो हमारे सर पर हाथ रखते हैं, शुभ सोच करके, शुभ चिंतन के साथ वो करते हैं, तो वो वाइब्रेशन मिलते हैं। तो मेडिटेशन आप अपने लिए करें, लेकिन उसके साथ साथ एटमोस्फियर में पॉजिटिव प्रकंपन हम फैलाते हैं तो ये सेवा भी हो जाती है, अर्थात स्व सेवा भी और सर्व की सेवा, औरों की सेवा भी। जब आंख खोल करके मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी एक सेवा भी हो जाती है। और आंखें खुली रखने से हमारा मन उस चित्र के प्रति एकाग्र रहता है और कहीं हमारा ध्यान है वो जाएगा नहीं। इसीलिए भी खुली रख के करना। और दूसरी बात एक और भी आती है कि गीता में भी कर्म योग की बात कही है कि कर्म के साथ योग हो, भगवान को याद करें। तो जब आंखें बंद करके अभ्यास समय हो गया होगा, या तो हम कर्म कर पाएंगे या तो हम भगवान को याद कर पाएंगे। और यहाँ बहुत अच्छी बात सिखाई जाती है कि हमारे पिता हैं, माता हैं, अब उनको याद करना हो तो क्या खास चित्र रख करके और खास आंखें बंद करके हम याद करते हैं? चलते फिरते, खाते उठते, जिनसे हमारी प्रीत होती है, हर कदम पर वो व्यक्ति हमें याद आती है, तो परमात्मा से भी हमारी प्रीत, ये मेडिटेशन है। तो कर्म करते हुए भी हम क्या कर सकेंगे? उस परम शक्ति को याद कर सकेंगे। हमारे कर्म भी यथार्थ होंगे, कर्म में कुशलता भी आएगी। और हम देखें कि सारे दिन में कितना घंटे बैठने का हमें टाइम मिलता है अपने जीवन में। आजकल हर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। कई बार तो ये भी कह देती है, अरे भाई मरने की फुर्सत नहीं है, ये भी हम कहते हैं। तो जब हमारे पास टाइम नहीं है तो बैठ करके आंखें बंद करके कितना समय बैठे रहोगे? इसलिए आंखें खुली रख करके अभ्यास होगा तो हम रास्ते में चलते हुए, हम ट्रैवल कर रहे हैं बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी कर्म के साथ साथ हम क्या कर सकेंगे? दिन भर में बहुत अधिक समय ईश्वर को याद कर पाएंगे। आंखें बंद करके तो लिमिटेड हमें समय मिलता है, हमारे कार्य को छोड़ करके तो कितना समय मेडिटेशन हम कर पाएंगे। इसीलिए भी आंखें खुली रख करके मेडिटेशन करने का अभ्यास। और मैं समझती हूँ कि कई बार आपने भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई एक विचार में गहरे आप चले गए, उस चिंतन में आपके सामने से कोई पास हो गया, आंखें खुली है, किसी ने कुछ कहा भी तो वो सुनाई भी नहीं दिया और दिखाई भी नहीं दिया, कान भी ठीक थे, आंखें भी खुली थी, फिर भी न दिखाई दिया न कहते मैंने आपको बुलाया, पता नहीं चला, कहते नहीं। और पूछते भी है किस सोच में, किस ख्याल में बैठे थे? तो आंखें खुली होती है, लेकिन जो व्यक्ति पास हुआ हमें नहीं दिखाई देता है। एक बारी मैंने ये कहानी सुनी थी कि एक प्रोग्राम था शिवानी बहन का, और बाजू में बिल्डिंग थी ना, तो वहां एक बहन ने मुझे सुनाया था कि भाई एक फिर या जो बेचने वाला कुछ सब्जी फ्रूट्स वो पास हो रहा था, और एक बहन थी वो अपने फोन पर बात करने में व्यस्त थी, उसके हस्बैंड ने उनको बुलाया तो उसने सुना ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि वो अपने फोन में बिजी थी, तब उसका आवाज नहीं आया। और जब फोन उसने रख दिया तो तुरंत उसकी आवाज उसको डिस्टर्ब करने लग गई, कहती है कि ये देखो बाहर लोग कितना चिल्लाते हैं और डिस्टर्ब होता है। हस्बैंड ने कहा ये पहले भी चिल्ला रहा था, लेकिन तब तुमको डिस्टर्ब नहीं हुआ क्योंकि तुम खुद बुद्धि कहाँ थी, बिजी फोन में अपने रिलेटिव के साथ बात करने में, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ जी। इसी तरह से हम देखें कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। आंखें खुली रखने से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, हमारा मन जिस तरह है, जहाँ है वहां पर ही हमारी बुद्धि केंद्रित होती है। इसलिए हाँ, डिफिकल्ट शुरू में लगेगा क्योंकि प्रैक्टिस आंखें बंद करके पड़ गई है हमें, लेकिन धीरे धीरे ये अभ्यास है ना करने से कर्म योगी जीवन हम अपना बना पाएंगे। ओम शांति
जी। दीदी मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 2-3 मिनट के लिए हमें मेडिटेशन कराएं, और हम आपके सानिध्य में बैठ के मेडिटेशन करना भी चाहते हैं। और हमारे दोस्त मेडिटेशन करेंगे आपके साथ साथ, तो उनको भी अच्छा लगेगा।
हाँ जी, तो चले, श्री निधि भाई ने बताया कि रोज ही आप कुछ समय अंत में मेडिटेशन करते हैं। आध्यात्मिक बातें, मेडिटेशन की बातें तो हमने बहुत की, लेकिन उसकी प्रैक्टिस हम कैसे अपने जीवन में करें? सर्वप्रथम, जो कभी भी हमने ध्यान नहीं दिया है अपने मन के प्रति, हमारे मन में प्रेजेंट समय पर कौन से विचार चल रहे हैं, उसको बिल्कुल साक्षी होकर के देखें। मैं समझती हूँ अभी तो आप सब सुनने में थे, तो यही विचार आपके मन में चलते होंगे, वरना जब भी मेडिटेशन शुरू करें तो उसके पहले कोई सोच तो होता ही है। और मेडिटेशन वो नहीं है कि कुछ भी सोचना नहीं है, सोच तो रहेगा, लेकिन क्या सोचे, कैसे वो सोचे, कैसे उसका एक्सपीरियंस हम अपने जीवन के अंदर करें, उसके लिए पहले जो चलती हुई विचारधाराएं उनको देखें। आप उनके प्रति एकाग्र होंगे तो वो विचार की गति है मन की, वो धीरे 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 स्लो होती जाएगी, और मन में आप जो चाहते हो वो विचार वो क्रिएट करें। और हम ये सोचें कि तन से अलग मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, पूरे शरीर का संचालन करने की पावर मुझ आत्मा के पास है, इस आत्मा में कमाल की शक्ति है, बहुत सूक्ष्म, जो इन आंखों से वो एनर्जी दिखाई नहीं देती है, जो एक तार के रूप में हमारे मस्तक के बीच ब्रह्मपुटी में है, लेकिन इतने किलो शरीर वजन को उठाने की वो पावर रखती है। दिन भर में इन शरीर के माध्यम से कितने न वो कर्म करवाती है, उसकी शक्ति का अंदाज हमें है। ऐसी मैं समर्थ शक्तिशाली एक आत्मा हूं। बहुत समय से मैं प्योर एक शुद्ध आत्मा, भी कुछ समय से उस पर अलग अलग लेयर आ गए हैं, लेकिन आज हम बैठ करके उस लेयर को दूर करके जो ओरिजिनल हम एक प्योर सोल हैं, एक शुद्ध हैं, शक्तिशाली हैं, हमारी ओरिजिनल रियल स्थिति को हम विचारों के माध्यम से महसूस करें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति मुझे अति प्रिय है, हर कार्य मुझे शांति से करने की इच्छा होती है। जो कोई भी मिले उनको भी शांति का एहसास कराएं। हर व्यक्ति की एक मांग है, खोज है। मैं अपने उस स्वरूप में स्थित होकर सर्व को शांति के प्रकंपन महसूस कराऊं। और वो तब होगा मुझ आत्मा के पिता परमात्मा ईश्वर प्रभु अल्लाह जो भी कहें वो शांति के सागर है। जब मैं उनको याद करती हूँ तो शांति के वाइब्रेशन बाकी सब कुछ भुलाकर वो वाइब्रेशन मैं खुद फील करती हूँ और महसूस होता है कि मैं स्वयं शांति से भरपूर हो चुकी हूँ और मेरे द्वारा भी चारों ओर शांति के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। जहां बैठे हैं वहां बिल्कुल शांति छा गई है। बस मन करता है इस शांति को बनाए रखे, बार बार मेडिटेशन द्वारा इसकी अनुभूति करते रहे और औरों को भी शांति महसूस कराए। शांति ओम शांति ओम शांति।